मेरे घनिष्ठ युवा मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 29 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी मगाराम माली का जो पाली राजस्थान से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, जो सूचनाएं मैं आप सबको फ्राइडे शुक्रवार को दिया करता हूं वह सूचना मुझे आज ही आप सबको देनी पड़ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि शुक्रवार को गजेटेड हॉलीडे है, फिर शनिवार और रविवार को तो छुट्टियां होती ही हैं। तो जो सूचनाएं हैं वो ये कि इन 3 दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आज आपको एज इट इज मिलती रहेंगी। साथ ही योजना पत्रिका के आपको आर्टिकल्स हिंदी अंग्रेजी के पढ़ने को मिलेंगे, कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स आपको हिंदी अंग्रेजी के पढ़ने को मिलेंगे और आपको एक साप्ताहिक प्रश्न वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। ये कुछ सूचनाएं थी फ्रेंड्स। मुख्य विषय के तहत मैं आज आपसे जो प्री एग्जामिनेशन का में जो आंसर तक पहुंचने की जो क्षमता होती है इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक घटना को लेकर के जो अभी अभी आपके सामने घटित हो रही है, जिसे आप रोज गुजर रहे हैं, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, कुछ प्रकाश इस पर डालना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी समझौता हुआ है, बेका समझौता, जिसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से बातें भी की हैं, राइट? अब सवाल यह है कि अभी आपको इस समझौते पर बहुत सा पढ़ने को मिलेगा। एक तरह से यूं कह लीजिए कि बम्बार्डिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, और ऐसा होगा ही। हर अखबार इसके बारे में लिखेगा, एडिटोरियल लिखेंगे, न्यूज आपके पेपर्स में बकायदे आर्टिकल्स छपेंगे। हो सकता है कि जो अच्छे चैनल्स होंगे थोड़े से बौद्धिक किस्म के इस विषय पर डिस्कशन भी कराएं। दूरदर्शन चैनल तो पिछले 2 दिनों से उसने बकायदे इस पर डिस्कशन कराया है, यह आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट? अब सवाल यह है कि आप इस भूल भुलैया में या इस कह लीजिए कि घने जंगल में कैसे अपने लिए रास्ता तलाश करेंगे कि इनमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका आधार क्या हो सकता है, कैसे आप निर्णय लेंगे। देखिए, जो गाइडेंस होती है सही मायने में उसका जो पहला धर्म होता है, कर्तव्य होता है, वो यही कि आपके लिए रास्ता निकाले, आपको इसमें खो जाने से बचाए। क्योंकि आप भटकने लगेंगे इधर उधर तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। पता लगा कि प्री एग्जामिनेशन में भी इस पर क्वेश्चन पूछे गए लेकिन आप उसे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप भूल भुलैया में भटक रहे हैं। मेंस में भी पूछे गए तो आप टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहां 200 शब्द में ही लिखना है और आपके दिमाग में 2000 शब्द भरे हुए हैं, तो आप 2000 शब्दों में से 200 शब्दों का चयन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसका फिर उपाय क्या है? देखिए, उपाय बहुत सरल है। सरल उपाय यह है कि पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि मैं ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूं या इसकी जो तैयारी कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं। अब जैसे भारत अमेरिका संबंध, कल शायद मैंने इशारे के तौर पर आपको बताया भी था, ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी हिस्सा है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन का 2 तरह से हिस्सा है। एक तो आपके जनरल स्टडीज में इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर जो दूसरा है वो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की दृष्टि से इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, जबकि आप जनरल स्टडीज की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हम अभी जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे निर्धारण करेंगे? आपको थोड़ा सा धैर्य अपनाना चाहिए, थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। ये नहीं कि गए और सीधे सीधे अपना चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया, जो भी कटिंग्स मिल रही हैं पढ़ना शुरू कर दिया, उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिया, उससे बात नहीं बनेगी। वो आप बेकार की मेहनत कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए, जब हम भारत अमेरिका समझौते की बात कर रहे हैं अभी की, तो सीधी सी बात है कि आपको पृष्ठभूमि मालूम होना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच किस तरह के संबंध अभी तक रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने इतिहास पढ़ लिया, थोड़ा सा बस, आप एक झलकी के रूप में उसे जानेंगे क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना जरूरी होता है। आपने थोड़ा सा समझ लिया, इसके बाद फिर आप अपना सिलेबस उठाइए और देखिए कि जनरल स्टडीज में क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो आपको गाइड करेगा कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो आप उसमें पाएंगे कि भारत के बड़े देशों के साथ संबंध, बड़े संगठनों के साथ संबंध, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध, सिलेबस में भी इस तरह की बात कही गई है कि इनको महत्व दिया जाएगा। फिर आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां भी आपको इसी तरह के प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको बेका समझौता पर नहीं पूछा जाएगा और क्या क्या समझौते हुए ये इस पर नहीं पूछे जाएंगे। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, प्री में तो हो सकता है कि थोड़ा सा पूछा जाए तो, लेकिन प्री की तैयारी तो आपको सामान्य तौर पर ही करनी है कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, उसको देखते साथ ही आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ ये है। अपनी तरफ से तो कुछ लिखना नहीं है, लिखने का चैलेंज तो मुख्य परीक्षा में है। तो आप भारत और अमेरिका के संबंधों की जो तैयारी करेंगे वो सही मायने में चीन के संदर्भ में करेंगे कि हमारे जो संबंध अमेरिका के साथ विकसित हो रहे हैं, ये चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, जो आक्रामक नीति है, उसको रोकने में कितनी सफल रहेगी। क्योंकि अभी चीन आप देख रहे हैं कि कैसे पूर्वी लद्दाख में जम करके बैठा हुआ है, एक तरह से थ्रेट दे रहा है, भारत उसका मुकाबला कर रहा है। और भी जो दूसरे थ्रेट चीन के जरिए हमें मिली रहे, पूरे के पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को बार बार आप पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको इसकी जो तैयारी करनी है वह कि ज्यादातर चीन के संदर्भ में करनी है। तो चीन के संदर्भ में आप 5-7 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस आप उन्हें नोट कर लीजिए, खत्म हो गया, नोट्स आपके बन गए। और फिर आप थोड़े से पॉइंट्स वो नोट कर लीजिए जो भारत और अमेरिका के संबंधों को सुदृढ़ करने के कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए कि वहां राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसमें कैसे भारतीयों का काफी दबदबा आपको दिखाई दे रहा है ना, दबदबा कि भारतीय वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतदाता के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो अमेरिका को यह देखना पड़ेगा कि भारत के संबंध उससे बेहतर हो, तभी वो अमेरिकी मतदाताओं के मत हासिल कर सकेंगे, उन मतदाताओं के भारतीय मतदाताओं के मत हासिल कर पाएंगे जो अमेरिका में रह रहे हैं। बस इन थोड़े से पॉइंट्स इनको देख लीजिए, बात खत्म, भूल भुलैया से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगा कि खासकर ये इस घटना को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, मैं भी आपको बहुत से आर्टिकल्स प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आपको चाहिए कि आप केवल इसी आलोक में, इसी प्रकाश में पॉइंट्स नोट करें और तैयारी करें। अब आइए आज के मैं मुख्य विषय पर आता हूं। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने प्याज की बात कही थी, सरकार ने प्याज के भंडारण पर एक रोक लगा दी है, 2-3 दिन पहले की बात है। उस समय मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, डी का, वो 13वां प्रश्न है डी सेट का, कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। आपको कहीं डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको जरा सा भी मांग और पूर्ति के सिद्धांत का ज्ञान है और कैसे वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है, ऑनलाइन क्लासेस में हमने अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है कि कैसे वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। जो ऑनलाइन के इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं, हालांकि सभी विषय के लेक्चर्स इसी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के थोड़े से इस मायने में एकदम अलग है कि बहुत ही व्यावहारिक अर्थशास्त्र वहां समझाने की कोशिश की गई है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, कोई भी सेक्टर हो, बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर बातें की गई हैं। तो वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये बकायदे है और मांग एंड सप्लाई की थ्योरी। अब आप देखें कि कौन कौन सी नीतियां प्रभावित कर रही, आइए हम उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बीच में मेरे पास कुछ मेल भी आए हुए हैं जिन मेल्स को पढ़ने के बाद मैं साफ तौर पर यह समझ सकता हूं, निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जिस स्टूडेंट ने भी ये मेल लिखा है, अपनी समस्या का की चर्चा की है, उसे अर्थशास्त्र का बिल्कुल भी व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि उसने अर्थशास्त्र को रट डाला हो, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है, अन्यथा इस तरह की समस्या से संबंधित मेल लिखे ही नहीं जाते। समस्या मतलब वो उत्तर चाह रहे हैं, मूल्य, चावल का मूल्य। मान लीजिए कि चावल 20 रुपये किलो है, आप इसको उदाहरण से समझिए, 20 रुपये किलो है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो पहला ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार ने घोषणा कर दी है कि कोई भी व्यक्ति, हम चावल ही ले रहे हैं, धान नहीं ले रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी किसान से 18 रुपए से कम कीमत में चावल नहीं खरीदेगा, यही है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार ने यह घोषणा नहीं की होती तो हो सकता है कि बाजार में चावल का मूल्य ₹15 होता, लेकिन सरकार का कानून आ गया है तो प्रभाव पड़ गया। तो जब ₹18 में लोग खरीद रहे हैं चावल किसानों से, तो ₹20 में बेच रहे हैं, तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कर दिया तो प्रभाव पड़ गया। दूसरा है सरकार द्वारा व्यापार करना। लोगों को कुछ भ्रम हो जाता है कि सरकार कैसे व्यापार करेगी, सरकार कोई व्यापारी तो है नहीं। यहां आपको समझना पड़ेगा कि सरकार द्वारा व्यापार करना कहने का क्या अर्थ है। आप अभी बकायदे अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इससे पहले आप कोरोना के समय में आप देखिए जब मंडियां थी तो वहां गेहूं खरीदी हो रही थी, क्या सरकार गेहूं नहीं खरीद रही थी? सरकार गेहूं खरीद रही थी ना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मंडियों से गेहूं कौन खरीद रहा था? सरकार भी खरीद रही थी। धान क्या सरकार नहीं खरीदती है? धान भी सरकार खरीदती है। तो जो सरकार धान, अभी आप देखिए कि कितना आपके आंकड़े आ रहे हैं कि इतने लाख टन सरकार ने धान खरीदी की, इतने रुपए की धान खरीदी की, आप पढ़ रहे हैं तो व्यापारी तो कर रही है। फिर आप कहेंगे कि सर ये बेचती नहीं है तो व्यापार कैसे हुआ? अरे भैया जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां वहां भले ही वो ₹1 किलो गेहूं और ₹2 किलो चावल बेच रही है, लेकिन बेच तो रही है, ये सरकार का व्यापार है। तो अगर सरकार खरीद रही है और बेच रही है तो क्या उसका प्रभाव सीधे सीधे मूल्य पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अगर दो दुकान अगल बगल में है, एक दुकान एक चावल को ₹18 बेच रहा है और दूसरा दुकान उसी चावल को ₹20 में बेच रहा है, तो आप कौन सा खरीदेंगे? ₹18 वाला खरीदेंगे। तो जब आप ₹18 वाला खरीदेंगे तो दूसरा दुकानदार क्या सोचेगा? उसके यहां तो बिकी नहीं रहा, तो वो भी ₹18 कर देगा ना, प्रभाव पड़ गया। फिर है सरकार द्वारा भंडारण करना। प्याज जो है इसी से जुड़ा हुआ है। सरकार के पास चावल है, सरकार ने देखा कि यार चावल की कीमत तो ₹22 हो गई, तो ठीक हम अपने भंडार से, अपने स्टोरेज से मार्केट में चावल दे रहे हैं, चावल की आपूर्ति बढ़ा दे रहे हैं। जब चावल की आपूर्ति बढ़ा दी गई तो सीधी सी बात है कि वस्तु का मूल्य कम हो गया। प्याज में अभी यही हुआ है। फिर है उपभोक्ता सहायकियां, सब्सिडी, कंज्यूमर सब्सिडीज। कंज्यूमर सब्सिडीज का मतलब है कि सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है। आपको लग रहा है कंज्यूमर सब्सिडी ये क्या चीज हुई? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में सोच करके देखिए। सरकार जो चावल आप समझिए ₹2 किलो में बेचती है, वो सरकार को कुल मिलाकर के ₹20-25 किलो का पड़ता है वो चावल। तो वो क्या कर रही है कि जो ₹2 किलो में जो चावल खरीद रहे हैं सरकार, वो उपभोक्ता हो गए ना, उपभोक्ता हो गए, उनका ₹20 किलो वो खुद उठा रही है खर्च, नुकसान, हानि। तो यहां वो उपभोक्ता को सब्सिडी दे रही है, तो यहां भी चावल का मूल्य प्रभावित हो रहा है। तो ये चारों के चारों वो तथ्य हैं जो एक प्रकार से बाजार में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां कितना खूबसूरत तरीके से अर्थशास्त्र का व्यावहारिक रूप आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपको अपनी तैयारी को यही रूप देना पड़ेगा, इसी तरह से विषय को समझना पड़ेगा। इतिहास में आप स्वाभाविक तौर पर लिबर्टी ले सकते हैं क्योंकि इतिहास में इस तरह की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन बहुत से प्रश्न इस तरीके के होते हैं, कभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन बाकी जो आपके विषय हैं, यहां तक कि ज्योग्राफी तक में वो चीजें दिखाई देने लगी हैं, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, आपको इसी तरह से विषय को समझना होगा। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की दोस्तों इजाजत चाहता हूं। 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।